हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। फोन कॉल आते ही वेदांश हड़बड़ाकर बिस्तर पर उठ बैठा और बोला, नहीं, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं नहीं मान सकता कि ऐसा कुछ भी हुआ है। दूसरी तरफ से जो कुछ भी अंबिका ने सुना वो उसे समझ नहीं आई, लेकिन वेदांश के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। उसे देखकर अंबिका ने मन ही मन सोचा, किसका फोन है और इसे क्या हो गया? अचानक से क्यों? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। फोन कॉल आते ही वेदांश हड़बड़ाकर बिस्तर पर उठ बैठा और बोला, नहीं, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं नहीं मान सकता कि ऐसा कुछ भी हुआ है। दूसरी तरफ से जो कुछ भी अंबिका ने सुना वो उसे समझ नहीं आई, लेकिन वेदांश के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। उसे देखकर अंबिका ने मन ही मन सोचा, किसका फोन है और इसे क्या हो गया? अचानक से क्यों घबरा रहा है? ये सब ठीक तो है ना? लग तो नहीं रहा कि कुछ भी ठीक होगा। वेदांश ने एकदम सीरियस आवाज में कहा, हाँ, मैं आता हूँ, रुको तुम, मैं खुद से ही पता कर लूंगा। उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और बिस्तर से उठ गया। उठते हुए उसने अंबिका पर एक नज़र डाली। उसकी आंखों में उसे कई सवाल नज़र आ रहे थे, लेकिन वेदांश ने उसे कुछ भी पूछना ज़रूरी नहीं समझा। शायद अंबिका भी कुछ बोलने वाली नहीं थी, लेकिन वो सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी। वेदांश तुरंत वॉशरूम की ओर चला गया। वेदांश के चले जाने पर अंबिका ने राहत की सांस ली, लेकिन इस तरह से कॉल आने के बाद वेदांश उसे बिस्तर पर कई सवालों के साथ छोड़कर चला गया था। अंबिका ने उसकी तरफ देखते हुए मन ही मन कहा, कुछ कहा भी नहीं इसने, किसका फोन था, लेकिन मुझे क्यों नहीं बताया? लेकिन जरूर कोई बड़ी बात है। अंबिका के मन में ऐसे ही हजारों सवाल थे। वो वैसे ही लेटी रही और वेदांश के लौटने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर में वेदांश पूरे कपड़े पहनकर वॉशरूम से बाहर निकला। वो बाहर जाने के लिए एकदम तैयार लग रहा था। उसने साइट में रखा मोबाइल फोन उठाया और अंबिका की तरफ एक नज़र देखकर वहां से चला गया। उन दोनों ने कुछ नहीं बोला। उसके जाने के बाद अंबिका ने तुरंत अपने कपड़े उठाए और पहनने लगी। उसे पता था वेदांश ने जाते वक्त दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया होगा। अब तक उसे इन सब चीज़ों की आदत हो गई थी, इसलिए उसने दरवाज़ा चेक भी नहीं किया। अपने कपड़े पहनने के बाद अंबिका ने राहत की सांस ली और इधर उधर देखा। सामने लगे शीशे पर उसकी नज़र पड़ी। उसे अपना चेहरा बहुत ही अलग, बदला हुआ सा लग रहा था। उसके होठों पर सूखे हुए खून के निशान साफ नज़र आ रहे थे। वेदांश के कातने के निशान थे, वैसे ही निशान उसे अपनी गर्दन पर भी दिख रहे थे। अंबिका ने धीरे से उन्हें छुआ और फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, पता नहीं कब तक चलेगा ये सब। क्या मेरे नसीब में यही लिखा है, इसी तरह किसी की रखेल बनकर रह जाना? इससे ज्यादा और कुछ नहीं बन सकती क्या मैं किसी के लिए? और वैसे भी अब इतना सब कुछ होने के बाद कौन तुझे अपने घर की बहू बनाएगा? अंबिका, कौन तुझे अपनी पत्नी बनाएगा? भूल जा, वो सब कुछ तेरे लिए नहीं है। इतना बोलते हुए अंबिका ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसकी आंखों में भरे आंसू बहने लगे। तभी उसने अपने आप से कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बहुत बुरा। हे भगवान, मेरे परिवार की रक्षा करना। ओ4। अब तक रात हो चुकी थी और अक्षय अपने घर लौट आया था। जब वो घर आया तो उसने देखा कि उसका भाई भी वापस आ चुका था। उसकी बहन देविका उनके लिए खाना बना रही थी और मानस पापा के कमरे में बैठा हुआ था। अक्षय बहुत उदास लग रहा था। अंदर आते हुए उसने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। देविका उसके लिए पानी लेकर आई और पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ाते हुए बोली, क्या हुआ भैया, आप ठीक तो है ना? इतनी देर कहाँ लग गई आपने? मुझे बहुत चिंता हो रही थी, दीदी का कुछ पता चला? देविका के सवाल पर अक्षय ने धीरे से नहीं में सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू थे और वो ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा था। उसके दोनों भाई बहनों ने उसे नोटिस किया और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मानस अक्षय के बगल में बैठते हुए बोला, भाई, ये सब क्या हो रहा है? आपको किसने किडनैप किया था? आपको इतनी सारी चोटें लगी हुई हैं और अंबिका दीदी वो भी गायब है, कौन कर रहा है ये सब? कैसे और कब शुरू हुआ? मानस के सवाल सुनते ही अक्षय ने उसकी तरफ देखकर कहा, मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, ये सब कुछ मेरी वजह से ही शुरू हुआ। मुझे अपनी औकात से बाहर जाकर इतनी अमीर लड़की से प्यार नहीं करना चाहिए था। मेरी वजह से ही आज सब मुसीबत में है। मिशिका अस्पताल में है, उसकी हालत इतनी खराब है और अंबिका दीदी को पता नहीं कहाँ कैद करके रखा है उसके उस डेविल भाई ने। एक नंबर का शैतान है वो। पता नहीं दीदी ठीक भी होगी या फिर। वो अपनी बात पूरी करने से पहले ही देविका बीच में बोल पड़ी, भैया प्लीज कुछ भी गलत मत बोलना, अंबिका दी को कुछ नहीं हो सकता और मुझे पता है हम सब मिलकर उन्हें जरूर ढूंढ लेंगे और वापस ले आएंगे यहाँ पर, बिल्कुल सही सलामत। उन दोनों की बातें सुनकर अक्षय को थोड़ी हिम्मत मिली और उसने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। वहीं दूसरी तरफ वेदांश बहुत तेजी से कार चलाते हुए अपने घर से निकला और कुछ ही देर में सिद्ध हॉस्पिटल पहुंच गया। हॉस्पिटल के मेन गेट के बाहर उसने एक झटके से कार के ब्रेक लगाए और तुरंत कार से उतरकर अंदर जाने लगा। उसके पीछे एक और कार आई जिसमें उसके बॉडीगार्ड, मैनेजर और बाकी लोग थे। उसकी सिक्योरिटी के कुछ लोग और उसका असिस्टेंट पहले ही वहाँ पहुँच चुके थे। उसके असिस्टेंट ने कुछ देर पहले उसे फ़ोन किया था। उसने जो बात कही थी उसे सुनकर वेदांश को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ था, इसलिए वो खुद अपनी आंखों से देखने के लिए यहाँ आया था। अंदर आते ही वेदांश तेज आवाज में चिल्लाना शुरू किया, डॉक्टर, डॉक्टर, नर्स, क्या हुआ यहाँ पर? मेरी बहन को कुछ भी कैसे हो सकता है? आप लोगों ने तो कहा था उसकी हालत ठीक है, तो फिर वो? नहीं नहीं, जरूर कोई गलतफहमी हुई है सौरभ को, अस्पताल के एक सीनियर डॉक्टर वेदांश की ओर आते हुए बोले। क्या हुआ मिस्टर ठाकुर, आप इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हैं? ये एक अस्पताल है, प्लीज थोड़ी हॉस्पिटल की मर्यादा रखिए। यहाँ पर और भी पेशेंट हैं जिन्हें ऐसी आवाज़ से दिक्कत हो सकती है और उन सब का। वेदांश ने गुस्से में दांत पीसते हुए डॉक्टर की तरफ देखकर कहा, मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है क्या नहीं, और तुम पहले मुझे ये बताओ मेरी बहन को कुछ भी कैसे हो सकता है? कैसे उसकी डेथ की खबर मुझे मिली? अभी के अभी बताओ कि ये सब कुछ झूठ है और गलतफहमी। उसे कुछ भी नहीं हुआ है, और अगर उसे कुछ हुआ ना तो फिर समझ लेना तुम भी जिंदा नहीं बचोगे डॉक्टर। वेदांश की बात सुनकर डॉक्टर घबरा गए। उन्होंने नज़र उठाकर वेदांश की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की और नीचे देखते हुए बोले, आई एम सॉरी मिस्टर ठाकुर, लेकिन आपकी बहन आज सुबह से ही उनकी हालत स्टेबल नहीं थी और उन्हें बार बार अटैक आ रहे थे। हमने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन, वेदांश ने गुस्से से तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, लेकिन क्या क्या कहना चाहते हो तुम? तुम मेरी बहन को बचा नहीं पाए? ऐसा नहीं हो सकता, वो सिर्फ कोमा में थी, वो काफी पहले रिकवर हो चुकी थी, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? और अभी कहाँ है वो? मुझे उसे देखना है। डॉक्टर ने सर झुकाकर माफ़ी मांगते हुए वेदांश से कहा, सॉरी सर, लेकिन आपकी बहन की डेथ हो चुकी है और आपकी माँ उन्हें अंतिम संस्कार के लिए ले जा चुकी है, 4 घंटे पहले उनकी डेथ हुई थी। डॉक्टर की ये बात सुनकर वेदांश को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि उसकी बहन की मौत हो चुकी है। टू बी कंटिन्यूड। क्या लगता है आप लोगों को, कैसे हुई है मिशिका की डेथ और इस पर कैसा होगा वेदांश का रिएक्शन? क्या सच में उसे दुख होगा अपनी बहन का, और क्या उसे पछतावा होगा? क्या वो इस बात को मानेगा कि मिशिका की मौत की वजह खुद है, या फिर से इल्ज़ाम लगाएगा अंबिका पर? और क्या अक्षय को पता चलेगा मिशिका की डेथ के बारे में? क्या वो अंबिका को छुड़ा पाएगा वेदांश की कैद से? क्या लगता है आप लोगों को, बताइए कॉमेंट में।